एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
स्वर्ग छोड़ के धरती पे आया राजा होकर प्रजा बना। स्वर्ग छोड़ के धरती पे आया राजा होकर प्रजा बना। मेरे गुनाहों की माफी देने, मेरे गुनाहों की माफी देने आया तू, आया तू आया। पर मैंने न तुझको पहचाना, पर मैंने न तुझको पहचाना। क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, जो भी आया सजा देने आया, पापियों का अंत करने आया,
पापियों का अंत करने आया।
मुझको तू जीवन देने आया, आया तू आया तू आया। पर मैंने न तुझको पहचाना, पर मैंने ना तुझको पहचाना। क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, अनजान बन के रहा उम्र भर, मेरे पापों का तू अंत कर,
मेरे पापों का तू अंत कर।
आया तू जब भी मेरी राह पर, आया तू, आया तू, आया, पर मैंने ना तुझको पहचाना, पर मैंने ना तुझको पहचाना। क्षमा करो, क्षमा करो, स्वर्ग छोड़ के धरती पे आया, राजा होकर प्रजा बना। स्वर्ग छोड़ के धरती पे आया, राजा होकर प्रजा बना। मेरे गुनाहों की माफी देने, मेरे गुनाहों की माफी देने, आया तू, आया तू, आया, पर मैंने न तुझको पहचाना, पर मैंने ना तुझको पहचाना। क्षमा करो, क्षमा।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का वचन लेकर आपके सामने आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उसे प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तेरे वचनों से सीखना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे मन और हृदयों को खोल दे और तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा चला। विशेषकर मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, मेरे हरेक श्रोता गणों के संग हो, उनके मनों को खोल दे, वे तेरे वचनों को सुनकर समझ सके और तेरे रास्ता में चलने सके। पिता, उन्हें तेरे नजदीक आने के लिए मदद कर, मेरे संग हो, तेरा सामर्थ्य दे, पवित्र आत्मा के द्वारा चला कि मैं तेरे वचन को अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकूं। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। आज का संवाद का शीर्षक है मेरे पिता और तुम्हारे पिता के पास। समय आ गया था कि मसीह अपने पिता के सिंहासन के लिए स्वर्ग को जाए। एक ईश्वरीय विजय के रूप में वह एक विजय चिन्ह को लेकर स्वर्गीय दरबार में जाने वाला था। अपनी मृत्यु से पहले उसने अपने पिता से कहा था, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है, यूहन्ना 17:4। अपने जी उठने के बाद थोड़े समय तक इसी धरती पर रुका रहा ताकि उसके चेले लोग उसके इस जी उठे महिमामय शरीर से भली भांति परिचित हो जाएं। अब उनसे विदा होने के लिए तैयार था। उसने अपने आप को जीवित मुक्तिदाता होने को प्रमाणित कर दिया था। उसके चेलों को उसके साथ कब्र पर साथ देने की अब कोई जरूरत नहीं रह गई थी। अब उन्हें पूरे विश्व के सामने उसे एक महिमामय प्रभु के रूप में समझाना था। स्वर्ग जाने के लिए उसने उस स्थान को चुना जहां पर वह अपने जीवन काल में अक्सर जाया करता था। सियोन पर्वत को नहीं, दाऊद के नगर को भी नहीं, मोरिया पर्वत भी नहीं, बल्कि उस मंदिर का आंगन, उस सम्मान को प्राप्त किया जहां पर मसीह का ठट्ठा किया गया था और उसे तिरस्कार कर दिया गया था। जहां से यीशु भरे मन से हृदय पर एक बहुत बड़ा बोझ लेकर जैतून के पहाड़ पर विश्राम करने के लिए चला गया था। मंदिर के पहले भाग से प्रायश्चित हटकर पूर्वी पहाड़ पर चला गया था, जैसे कि अनिच्छा पूर्वक चुने हुए नगर को छोड़कर चली गई हो। इस प्रकार से मसीह जैतून पहाड़ पर से दुखी मन से यरूशलेम को देख रहा था। पहाड़ के बगीचे और घाटियां उसके आंसुओं से भरे प्रार्थना से महसूस की हुई थी। इसकी घाटियां भीड़ के विजयी नारों से कि वह इज़राइल का राजा है गूंज रही थी। उसकी ढलान पर बेथनिया में उसे लाजर का घर मिला था। उसके नीचे गतसमनी के बाग में उसने अकेले प्रार्थना किया और पीड़ा सहा था। इसी पहाड़ से उसे स्वर्ग को जाना था। जब वह फिर दोबारा आएगा तो इसी पहाड़ को उसके पैर पहले छुएंगे, एक दुखी मनुष्य के रूप में नहीं बल्कि महिमामय और विजय राजा के रूप में जैतून पहाड़ पर खड़ा होगा। जबकि इजरायली लोग हालेलुया और अन्य जाति के लोग होसाना की आवाज मिलाएंगे और उधार पाए हुओं की बहुत बड़ी भीड़ उत्तेजना से भरकर कहेगी कि वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। अब 11 चेलों के साथ मसीह उस पहाड़ की ओर प्रस्थान करता है। जब वे यरूशलेम के फाटक को पार करते हैं तो बहुत सी आंखें चकित होकर उस छोटे से समूह को देखती हैं। उनकी अगुवाई जो कर रहा है उसे थोड़े दिन पहले उन्होंने तिरस्कार कर दिया था और उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। चेलों को नहीं मालूम था कि यह उनके गुरु के साथ उनकी अंतिम मुलाकात है। यीशु ने उनके साथ बातचीत करने में समय बिताया और अपनी पहले की कही हुई बातों को याद दिलाया। जब वे लोग गतसमनी पहुंचे तो वह वहां रुक गया ताकि वे लोग उस दुख भरी रात की घटना को याद करें और जो उसने उन्हें सिखाया था उस पर विचार करें। फिर उसने दाखलता पर नजर किया, जिसका प्रतीकात्मक संबंध उसने अपना और परमेश्वर तथा कलीसिया का बताया था। जिस सच्चाई का बयान उस समय किया था उसे फिर से दोहराया। चारों ओर का वातावरण उसके असीम प्यार की कहानी कह रहा था। यहाँ तक कि चेले जो कि उसको बहुत ही प्रिय थे उस दुख की घड़ी में निराश होकर उसे छोड़कर चले गए थे। मसीह इस संसार में 33 वर्षों तक जीवन बिताया था। इतनी आयु में ही उसने ठट्ठेबाजी, अपमान और उपहास को सहा था। उसे तिरस्कार कर दिया गया था और अंत में क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। और अब जबकि वह स्वर्ग जाकर महिमा के सिंहासन पर विराजमान होने वाला था, जब वह उन लोगों की कृतज्ञता को याद करता है जिन्हें बचाने के लिए वह आया था, तो क्या उनके प्रति की गई सहानुभूति और प्रेम को वापस ना ले ले? उसकी सहानुभूति और प्रेम केवल उन्हीं के लिए ना रहे जो लोग उसे प्रेम करते और उसकी प्रशंसा और स्तुति करते हैं, जहां पर पाप रहित स्वर्गदूत उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी नहीं, जिन प्रिय लोगों को वह इस धरती पर छोड़कर जा रहा था उनसे वह कहता है, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मत्ती 28:20 में हम पाते हैं। जैतून के पहाड़ पर पहुंचकर यीशु उनकी अगुवाई करते हुए चोटी के उस पार बेथनिया के समीप पहुंचा। यहाँ पर वह फिर रुक गया और चेले उसके पास इकट्ठे हो गए। जब बड़े प्रेम से उसने उन्हें देखा तो उसके चेहरे से प्रकाश की ज्योति निकल रही थी। उसने उनकी गलतियां या असफलताओं पर उन्हें झिड़का नहीं। इस अंतिम समय में उनके लिए उनके प्रभु के मुख से बड़े ही कोमल शब्द निकले। उसने अपने हाथों को ऊपर उठाया जैसा कि आशीष दे रहा हो और उनकी रक्षा के लिए वायदा कर रहा हो। धीरे धीरे वह उनके बीच से स्वर की ओर उठने लगा। जब वह ऊपर की ओर जा रहा था तो भयग्रसित चेले चकित निगाहों से अपने प्रभु की झलकी को देखते रहे। एक महिमामय बादल आकर उसे उनकी नजरों से छिपा लिया और जब बादलों पर स्वर्गदूतों का रथ आकर उसे उसमें बिठा लिया तो उन्हें यह बात फिर याद आई, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। उसी समय स्वर्गदूतों के समूह ने आनंद भरे संगीत की धुन बजाना आरंभ कर दिया था। चेले लोग अभी भी ऊपर नजरें उठाए देख रहे थे। उन्हें जो आवाजें सुनाई पड़ी वे ऐसी लगी जैसे संगीत की मीठी धुन बज रही हो। उन्होंने नजरें फेर कर देखा तो वहां पर दो स्वर्गदूत मनुष्य के भेष में खड़े थे। उन्होंने उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। ये स्वर्गदूत उसके रक्षकों में से थे जो यीशु को उसके स्वर्गीय घर को ले जाने के लिए इंतजार कर रहे थे, ताकि उसे अपने घेरे में लेकर स्वर्ग को ले जाएं। स्वर्ग के सभी स्वर्गदूतों में से बहुत ही सम्मानित ये दोनों स्वर्गदूत वही थे जो मसीह की कब्र पर पहरा दे रहे थे और उसके पूरे जीवन भर उसके साथ साथ रहते आए थे। पूरा स्वर्ग ही बड़ा उत्सुकता के साथ इस पापमय धरती पर उसके रुके रहने के अंत की प्रतीक्षा कर रहा था। समय आ पहुंचा था कि स्वर्गीय विश्व अपने राजा का स्वागत करे। क्या ये स्वर्गदूत उस भीड़ में शामिल नहीं हो सकते थे जो यीशु का स्वागत करने वाली थी, परंतु पीछे रह गए लोगों को प्यार और सहानुभूति तथा शांति और सहारा देने के लिए वे रुक गए थे? क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उधार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? यह प्रतिज्ञा हम इब्रानियों का 1:14 में पाते हैं। मसीह मनुष्य शरीर में स्वर्ग को गया था। चेलों ने देखा कि किस तरह से बादलों ने उसका स्वागत किया था। वही यीशु जो उनके साथ चलता फिरता, बातें करता और प्रार्थना करता रहा था, जो उनके साथ रोटी खाता रहा, जो झील में उनकी नाव में था और उस दिन जैतून के पहाड़ परिश्रम करता रहा, वही यीशु आज स्वर्ग को चला गया ताकि पिता के सिंहासन का भागीदार बने। स्वर्गदूतों ने चेलों को भरोसा दिलाया कि जिसे स्वर्ग को जाते हुए देख रहे हो वह उसी तरह से फिर आएगा। मसीह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, यह प्रतिज्ञा हम बाइबल में पाते हैं। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। प्रकाशित वाक्य 1:7 और 1 थिस्सलुनीकियों 4:16 तथा मत्ती 25:31। इस प्रकार से प्रभु ने अपने शिष्यों से जो वायदा किया था वह पूरा होगा। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यूहन्ना 14:3। चेले लोग अपने प्रभु के वापस आने की आशा में आनंदित हो रहे थे। चेले लोग जब यरूशलेम वापस पहुंचे तो लोगों ने उन्हें बड़ी हैरानी से देखा। मसीह के मुकदमे और उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद लोगों का यह विचार बन गया था कि चेले लोग उदास चेहरे और सम से अपने सिर झुकाए हुए लोगों के सामने आएंगे। उनके दुश्मन लोग उम्मीद कर रहे थे कि उनके चेहरों पर अफसोस और हार के चिन्ह नजर आएंगे, परंतु इन बातों की जगह उनके चेहरों पर आनंद और विजय मुस्कान दिखाई दे रही थी। और उनके चेहरों पर जो खुशी दिखाई दे रही थी वह इस धरती की नहीं हो सकती थी। अपनी उम्मीदों के पूरी ना होने से वे लोग शोकित नहीं थे, बल्कि परमेश्वर की प्रशंसा व धन्यवाद कर रहे थे। आनंद से भरकर उन्होंने मसीह के जी उठने और स्वर्ग को चले जाने की आश्चर्यजनक कहानी सभी लोगों को बताया और उनकी इस गवाही को बहुतों ने स्वीकार कर लिया। अब चेलों को अपने भविष्य के विषय में कोई संदेह नहीं रहा। उन्हें मालूम था कि यीशु स्वर्ग में है और आज भी उसकी सहानुभूति उनके साथ है। उन्हें मालूम था कि परमेश्वर के सिंहासन के पास उनका एक मित्र है और वे उत्सुक थे कि अपने निवेदनों को मसीह के नाम से पिता तक पहुंचाएं। बड़ी ही श्रद्धा और गंभीरता के साथ प्रार्थना में अपने आप को झुका लिया और उसके वायदे को दोहराने लगे। यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यूहन्ना 16:23-24। वे लोग अपने विश्वास के हाथ को महान तर्क के साथ ऊपर से ऊपर उठाते गए। मसीह वह है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। रोमियो 8:34। जिस तरह से मसीह ने सहायक भेजने का वायदा किया था, उसी तरह से पिंतेकुस्त का दिन उनके लिए आनंद और खुशी लेकर आया था। स्वर्गीय दरबार में पूरा स्वर्ग मुक्तिदाता का स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहा था। जब वह स्वर्ग को गया तो उनके लिए भी मार्ग खोल दिया, जो बड़ा समूह उसके साथ कब्रों में से जी उठा था, और उस आनंद से भरे पवित्र लोगों के समूह का प्रशंसा, स्तुति और नारों से स्वागत किया गया। जब वे परमेश्वर के नगर के नजदीक पहुंच रहे थे तो मसीह के साथ चलने वाले स्वर्गदूतों ने ललकारा, हे फाटको, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारो, ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। बड़े आनंद के साथ प्रतीक्षा करने वाले स्वर्गीय लोगों ने पूछा, वह प्रतापी राजा कौन है? उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं कहा था कि वे उसे जानते नहीं थे कि वह कौन है, बल्कि वे तो प्रशंसा और स्तुति के ध्वनियों की गूंज को सुनना चाहते थे। आवाज आई, परमेश्वर जो सामर्थ्य और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है, हे फाटको, अपने सिर ऊंचा करो, हे सनातन के द्वारो, तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। फिर से ललकार सुनाई देती है, वह प्रतापी राजा कौन है? स्वर्गदूत उसके नाम की बड़ाई सुनने से थक नहीं रहे थे। मसीह को घेरकर चल रहे स्वर्गदूत उत्तर देते हैं, सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। भजन संहिता 24:7-10। तब परमेश्वर के नगर का द्वार पूर्ण रूप से खोल दिया गया और स्वर्गदूतों का झुंड मधुर गीत गाते और आनंद मनाते हुए नगर में प्रवेश करते हैं। वहां पर सिंहासन है और उसके ऊपर प्रतिज्ञा का मेघ धनुष दिखाई दे रहा है। वहां पर करूब और सराप स्वर्गदूत हैं। स्वर्गदूतों का सेनापति, परमेश्वर के पुत्र, पाप रहित संसार के प्रतिनिधि सभी लोग वहां पर एकत्र हुए हैं। स्वर्गीय सभा के सामने लूसिफर ने परमेश्वर और उसके पुत्र पर आरोप लगाया था। पाप रहित संसार के प्रतिनिधि, जिनके विषय में शैतान ने सोचा था कि वहां पर भी अपना राज्य स्थापित कर लेगा, सभी लोग वहां पर उद्धारकर्ता का स्वागत करने के लिए जमा हुए थे। वे लोग बहुत ही उत्सुक थे कि मसीह के विजय का उत्सव मनाएं और अपने महिमामय राजा का अभिनंदन करें, परंतु वह उन्हें संकेत द्वारा ऐसा करने से रोक देता है कि अभी नहीं, अभी वह राज सिंहासन का अभिषेक और राजकीय वस्त्र धारण नहीं कर सकता है। वह अपने पिता के सामने जाता है और अपने घायल सिर, बर्छी लगी हुई पसली और कीलों से फट गए पाँव की ओर संकेत करता है। कीलों से छेदे हुए अपने हाथों को उठाता है। अपनी विजय के चिन्ह स्वरूप वह परमेश्वर के सामने अपने पहले पुले को हिलाता है, अर्थात जो लोग उसके जी उठने के समय जी उठे थे उन्हें प्रस्तुत करता है। ये लोग उन असंख्य लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जो मसीह के दूसरे आगमन के समय जिलाए जाएंगे। वह पिता के पास जाता है, जिसे एक भी पापी के पश्चाताप करने पर खुशी होती है, जो एक के लिए भी आनंद और खुशियां मनाता है। इससे पहले कि इस पृथ्वी की नींव डाली जाए, पिता और पुत्र मिलकर एक वाचा बांधे थे कि यदि शैतान ने इस नई दुनिया को पाप में गिरा दिया तो मनुष्य को उसके बंधन से मुक्त कराएंगे। उन्होंने अपने हाथ मिलाए और प्रतिज्ञा किए कि मनुष्य जाति के लिए मसीह गारंटी एवजी बनेगा। इस प्रतिज्ञा को मसीह ने पूरा कर दिया। जब क्रूस पर वह जोर से बोला था, पूरा हुआ, तो उसने अपने पिता को संबोधित किया था। वाचा को पूर्ण रूप से पूरा किया जा चुका था। अब वह कहता है, हे पिता, वह कार्य संपन्न हो गया, मैंने तेरी इच्छा को पूरा कर दिया। हे मेरे पिता, मैंने मनुष्य के उद्धार का कार्य पूरा कर दिया। यदि तेरा न्याय इससे संतुष्ट है तो मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो। यूहन्ना 19:30-17:24। परमेश्वर की आवाज सुनाई देती है कि न्याय संतुष्ट है, शैतान पराजित हो गया। मसीह का पृथ्वी पर परिश्रम और संघर्ष करना, उसने हमें उस प्यारे में स्वीकार कर लिए। इफिसी 1:6। स्वर्गदूतों और पाप रही संसार के प्रतिनिधियों के सामने सच्चे न्याय को घोषित किया गया। जहां मसीह है वहीं उसकी कलीसिया भी होगी। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई हैं। धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। भजन संहिता 85:10। पिता अपने पुत्र को अपनी बाहों में समेट लेता है और कहा गया कि परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। इब्रानियों 1:6। शासक वर्ग, प्रधान और अधिकारी लोग अत्यंत प्रसन्नता के साथ जीवन के राजकुमार की महानता और उसके अछून अधिकार को स्वीकार करते हैं। स्वर्गदूतों का समूह उसके आगे साष्टांग दंडवत करता है, जबकि पूरा स्वर्गीय दरबार इस आवाज से गूंज उठता है, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। प्रकाशित वाक्य 5:12। विजय की गीत स्वर्गदूतों के हार्प की धुन के साथ मिल जाता है। पूरा स्वर्ग आनंद के साथ प्रशंसा और स्तुति से गुंजायमान हो जाता है। प्रेम विजयी हुआ, खोए हुए मिल गए। स्वर्ग हंसी खुशी के साथ घोषणा करता है, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे, आमीन। प्रकाशित वाक्य 5:13। उस स्वर्गीय आनंद के दृश्य से इस पृथ्वी पर हमारे लिए मसीह के अति सुंदर वचनों की प्रतिध्वनि आती है। मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। यूहन्ना 20:17। स्वर्गीय परिवार और इस पृथ्वी का परिवार सब एक हैं। हमारे लिए हमारा प्रभु स्वर्ग को गया और हमारे लिए जीवित है। जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। इब्रानियों 7:25। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह और उसके बलिदान के लिए। मेरे हरेक श्रोताओं के संग हो, उन्हें आशीष दे और मुझे भी आशीष दे पिता, कि हम यीशु मसीह को ग्रहण करें और तेरे लिए जिए और दूसरों को भी तेरा सुसंवाद बताए। हमें आशीषित कर पिता। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindiarsamc@sudadventist.org।
मैं हूँ गौरव चौहान
और मैं हूँ सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।